ओम शांति। कैसा था कल का बाबा? बहुत अच्छा था। क्या बोला बाबा ने? मीठा बोलो। ऐसा ही था ना? या सीरियस था? नहीं ना। क्या देखना चाहता है हमें वो? फरिश्ता। कई लोग नहीं समझते कि बाबा क्या बोल रहा है। आते ही, जैसे ही बाबा आए, बाबा ने बोला भी ये मुरली में आपने कैच किया होगा, बाबा ने सभी का फरिश्ता स्वरूप ही मर्ज कर लिया। साधारण नहीं, वर्तमान नहीं, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। और यज्ञ आदि में सबके पास ये मान्यता ही थी कि सूक्ष्म लोक में हम सबका फरिश्ता स्वरूप पहले से ही स्थित है। उसे देखो, उसे समझो और वैसा ही बनने का पुरुषार्थ करो। फिर धीरे धीरे बाबा ने बातें स्पष्ट की कि नहीं, ब्रह्मा भी फरिश्ता बनता है, वैसा तुम्हें भी फरिश्ता बनना है। तो कल बाबा दो ही चीज देख रहे थे, चमकती हुई मणियां और फरिश्ता स्वरूप। तो क्या है ये फरिश्ता स्वरूप? इसके लिए हम क्या अभ्यास करें, कौन सी धारणा अपनाएं? आज इस पे जरा चिंतन कर लेते हैं। आप सब चिंतन करना। गीत में भी कुछ बातें अच्छी आ गई हैं, आपने ध्यान दिया हो। फरिश्ता एक दो दिन पहले भी मुरली में आया, प्रकाश की काया, देह प्रकाश की। अब हमें स्थूल से सूक्ष्मता में जाना है। स्थूल है हमारा ये शरीर और इसको सूक्ष्म बना देना है लाइट का। कैसे बनेगा बोलो? कैसे बनेगा? देह भान को आत्मिक भान में बदल देना है। आ जाओ बहनों, आगे बहुत जगह, थोड़ा इधर हो जाओ बहने, तो भरा हुआ नहीं दिखेगा, नहीं तो पीछे वाले भाइयों की साइड में भी आ सकते हैं। भाई अभी नहीं आएंगे, और आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। तो हमें योग की अग्नि से, मैं एक सिंपल लैंग्वेज यूज करता हूं, योग की अग्नि से देह भान को गला देना है, ताकि हमारा शरीर रह जाए लाइट का शरीर। मोटी सी बात, स्थूलता है देह भान, देह अभिमान, इसके कारण सभी विकार हैं। फरिश्ता माना संपूर्ण निर्विकारी है। फरिश्ता माना जिसके मन में सबके लिए संभाव है, न कोई हिंदू न मुस्लिम, न काला न गोरा, न बड़ा न छोटा, न मेल न फीमेल, सबकी ये जो दृष्टि है हमारी और दृष्टिकोण है, इससे ऊपर, ये फरिश्ता है। सभी को ये ख्याल रहे, इस शरीर में प्रकाश का शरीर सदा ही है, सूक्ष्म शरीर सदा ही है। आत्मा केवल नहीं चलाती शरीर को, किसके साथ चलाती है? सूक्ष्म शरीर के साथ। देखो, जो आप में से डॉक्टर बैठे हो, वो सिखाते हैं और जानते हैं सभी, इस शरीर में पांच चीजें निरंतर बहती रहती हैं, चलती रहती हैं। उसमें वायु भी है, गैसेज, उसमें एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ब्लड भी है, ये सब निरंतर बह रहा, पानी भी है, इसको भोजन कहेंगे। ये पांचों चीज निरंतर प्रवाहित हैं हमारे शरीर में। मैंने कईयों से पूछा है एनर्जी क्या है, मेरी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात हुई, उसने बताया ये पांच चीजें शरीर में बहती रहती है। मैंने उनसे पूछा ये एनर्जी क्या है, इसका एक राइट उत्तर किसी के पास नहीं है। बोलो क्या है ये एनर्जी? हमारे मन के संकल्पों के शरीर में फैले हुए वाइब्रेशंस, ये मन की शक्ति, मन से ही एनर्जी, आत्मा का ही है वो, आत्मा की एनर्जी है, आत्मा के वाइब्रेशंस, शरीर मन के वाइब्रेशंस। तो ये हमारे मन के वाइब्रेशंस इस तन में सूक्ष्म शरीर बनाते रहते हैं, उसका रूप बदलता रहता है। जब आत्मा बहुत पतित है, विकारों में है, तो ये सूक्ष्म शरीर काला, और जब वो सतयुग में है तो ये सूक्ष्म शरीर गोल्डन, और जब वो फरिश्ता बनती है सफेद। हमारे पुण्य बहुत हैं तो बहुत अच्छा है ये शरीर। देखो आप एक उदाहरण ले लें, आपके घर में कोई बहुत सुंदर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सुंदर फंक्शन जिसमें आनंद का माहौल है, सब बहुत खुश हैं, आपके चेहरे कैसे हो जाते हैं? क्या हुआ? मन प्रसन्न है ना, तो मन से उसी तरह की एनर्जी वाइब्रेशंस पूरे देह में फैलने लगे, रोम रोम पुलकित है, तब होता है या नहीं? ये मन की एनर्जी है, तो मन की एनर्जी से बनता है ये सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर में। तो आत्मा हमेशा ही दो शरीरों में बैठी है, बाहर स्थूल बिल्कुल इसमें फैला हुआ, ऐसा ही सूक्ष्म। जब कोई भी आत्मा देह छोड़ती है तो इस सूक्ष्म शरीर सहित बाहर जाती है। बाबा ने भी देखा था ना, उसके बाबा ने नहीं, बाबा के काका का मूलचंद का शरीर छूट रहा था, सुनिए कहानी। तो उसको महसूस हुआ पैरों से आत्मा निकल रही है, वो आत्मा नहीं निकलती, पैरों से सूक्ष्म शरीर वहां से सिमटने लगता है। तो और भी सूक्ष्म बात सुन लें आप, देह और आत्मा के बीच इंटरेक्शन, संपर्क इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। डॉक्टर तो कहेंगे बहुत सारी नर्व फैली हुई हैं शरीर में, मैसेज उनसे जाता है, पर उनसे पहले मैसेज मन का सूक्ष्म शरीर के द्वारा पहुंचता है। तो ये गहरा कनेक्शन रहता है हमारे स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से। तो आत्मा निकलेगी देह छोड़ेगी, सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाएगा। इसलिए आपने सुना होगा कोई बताते हैं हम तो ऊपर से सब कुछ देख रहे थे, आत्मा होगी तो देखेगी नहीं, सूक्ष्म शरीर में रहती है, गर्भ में प्रवेश करेगी तो सूक्ष्म शरीर में। इसलिए एक जन्म के संस्कार, रोग, मानसिक कमजोरियां, ब्रेन की कमजोरियां दूसरे शरीर में भी ट्रांसफर हो जाती हैं। ये गति बहुत सूक्ष्म है, अब की मेडिकल साइंस से ऊपर है, उनके पास इसका ज्ञान नहीं है कुछ भी। तो हमें फरिश्ता बनना है, थोड़ी देर के लिए हम चिंतन करें, जरा अभी मेरे साथ करो, स्थूल शरीर हमारा हट गया, क्या बचेगी? आत्मा सूक्ष्म शरीर में विराजमान है, ये फरिश्ता स्वरूप। अब इस फरिश्ते स्वरूप को हमें परफेक्ट बनाना है, ताकि ये किरणें जो हमसे फैलती हैं, ताकि जो हमारा फरिश्ता स्वरूप है वो व्हाइट हो जाए, गोल्डन भी नहीं, व्हाइट। अब क्या है फरिश्ता? पांच सात इसके लक्षण निकाल लें, ताकि हम सबको फरिश्ता बनने के लिए उन धारणाओं को जीवन में लाने की इच्छा रहे, संकल्प रहे, हमें पता हो फरिश्ता बनना है तो ये धारणाएं अपनानी हैं। बोलो 5 7 8। पहली, बहुत लाइट रहना। ठहरो ठहरो, बहुत लाइट, लाइट माना हल्के, जैसे सिर पर कोई बोझ नहीं, चिंता नहीं। देख लें सभी, हमें दिनों दिन लाइट होते जाना है। सेवाओं का भी बोझ नहीं, गृहस्थ का भी बोझ नहीं, जिम्मेदारियों का भी बोझ नहीं। ये कला ज्ञान के बल से हमें डेवलप करनी है, सीखनी है। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये लाइट रहना। इस पे सभी चिंतन करेंगे, कौन कौन से बाबा के ज्ञान के महावाक्य हमें लाइट बनाते हैं। तो मन लाइट होगा तो मन से एनर्जी कैसी फैलेगी देह में? लाइट, सफेद फैलेगी। मन की लाइट लाइट फैला देगी शरीर में, और हमारा ये सूक्ष्म शरीर बहुत तेजस्वी होता जाएगा। देखो ब्रह्मा बाबा का, देखे आप तो ब्रह्मा बाबा के लास्ट दिनों में देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे बाबा का स्थूल शरीर है ही नहीं। कईयों को लगता था जैसे रूई का हो गया है, कईयों को दिखाई देती थी लाइट फैलती हुई। ब्रह्मा तो सबसे बड़े तपस्वी हैं, हम सब तो उस तपस्या तक अभी पहुंच नहीं सकते, और आगे हो जाओ बहने। तो ब्रह्मा जैसी तपस्या हमें करनी होगी अपने को लाइट बनाने के लिए। दूसरी धारणा, फरिश्ता माना किसे ऊपर? देहभान से ऊपर। बाबा ने तो एक सिंपल शब्द बोला था, आजकल भूल गए हम सब उसको, फरिश्ता था जिसका कोई रिश्ता नहीं। पर ये बात छोटी तो नहीं है ना, सारे तो रिश्ते जुड़े हुए, हजारों हजारों, एक एक से हजार हजार जुड़े हुए हैं। अब इन रिश्तों के बंधन को कैसे काटेंगे? रिश्ते तो रहेंगे। आप गृहस्थ में रहते हैं, आपके हमारा बच्चों से कोई रिश्ता नहीं, परिवार वाले पीटना शुरू कर देंगे आपको, इन कहां से, किसने ज्ञान सिखाया इनको ये? ऐसा रिश्ते हैं, लेकिन रिश्तों को अलौकिक बना देना, रिश्तों को आत्मिक रिश्ते बना देना, रिश्तों के बंधनों से स्वयं को मुक्त कर लेना, ये फरिश्ता। इसलिए फरिश्ता माना बंधन मुक्त, योग युक्त। अगर हम सबसे पहली धारणा लक्षण लें फरिश्ते का, योग युक्त, बुद्धि एक के सिवाय कहीं भी नहीं, ये है फरिश्ता स्वरूप। जिसकी दृष्टि एक के सिवाय कहीं नहीं, ये है फरिश्ता स्वरूप। तो देहभान से ऊपर आत्मिक दृष्टि में स्थित, इसके लिए लंबी साधना चाहिए, क्लास करने और कराने से काम नहीं चलेगा। लंबी साधना, आत्मा के सिवाय कुछ दिखाई न दे हरेक के तन में, ये लंबे काल की प्रैक्टिस। बच्चों से शुरू करें बहने, अपने छोटे घर में जो छोटे बच्चे उनसे शुरू करें, जो घर के मेंबर्स हैं उनसे शुरू करें। सब आत्माएं हैं, बहुत सुंदर साधना है, इससे मन आनंदित भी होगा और हमारे व्यर्थ संकल्प भी समाप्त। जिनको व्यर्थ को समाप्त करना है वो ये पहली प्रैक्टिस चालू करके देखे क्या होता है। मन जब आनंदित रहने लगता है तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाता है, मन खाली है तो व्यर्थ ज्यादा है। और आगे चलें, फरिश्ता माना, एक इससे पहले मैं ले लेता हूं पवित्रता से, बहुत शक्तिशाली, निर्भय, क्योंकि देहभान भय पैदा करता है कहीं ना कहीं, और भय का बीज मृत्यु का भय होता है। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठ गए, आत्मा आत्मिक दृष्टि, तो ये भय भी खत्म, और मास्टर सर्वशक्तिवान की फीलिंग से पावरफुल बन जाएं, सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेकर बहुत पावरफुल बन जाएं। बहुत साल पहले 92 में मुझे किसी ने बाइबिल में लिखित फरिश्तों के लक्षण भेजे थे, तब मैंने एक लेख भी लिखा ज्ञानामृत में, उनमें से 10 मैंने चुन लिए थे, बाकी तो रिपीट थे, 100 लिखे थे, वो 10 में सब 100 के 100 आ गए। उसमें एक ये भी था, फरिश्ते बहुत शक्तिशाली होते हैं, फरिश्ते सबके होते हैं, किसी एक के नहीं, फरिश्ते सबके होते हैं, फरिश्ते बहुत पवित्र होते हैं। तो हम वो सबके हैं, इसमें बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, आप सबने वो नहीं सुने हैं क्योंकि बहुत पहले हैं। बाबा कहा करते थे, जैसे सभी ये कहते हैं बाबा मेरा है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी सब कहें ये हमारे हैं। सोच लो इसके लिए क्या क्या चाहिए। कोई हमसे कोई लेने आया और हमने उसको झिड़क दिया, है भागो यहाँ से, तो वो कहेगा ये मेरे हैं। कोई कठिनाई में है, हमसे कुछ पूछने आया, मदद में लेने आया, हमने उसकी सुनी नहीं, अपनी सुना दी, वो कहेंगे ये हम मेरे हैं। सुख संबात है, सुख संबात, ये मेरे हैं। बाबा ने स्पष्ट किया था सतयुग में विश्व महाराजन को सभी इस नजर से देखेंगे, ये हमारे हैं। वहां ये बड़ा अंतर नहीं होगा कि कोई उनके पास जा ही ना सके, पुलिस खड़ी हो, बहुत सारे सेक्रेटरी हो, परमिशन लेनी पड़े, जैसे वो परिवार के हेड हैं, आराम से मिले जुलेंगे। राजाओं में भी ये रहा है, कोई भी राजाओं के पास जा सकते थे। तो फरिश्ते सबके होते हैं, फरिश्ते बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये तो एक एक टॉपिक एक एक बड़ी क्लास के लिए है। शक्तिशाली बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या छोड़ना पड़ेगा, व्यर्थ, जो व्यर्थ संकल्पों में रहते हैं वो शक्तिशाली नहीं बन सकते, उनकी सारी शक्तियां नष्ट होती रहती हैं साथ साथ। जो मोह में विभूत रहते हैं वो भी शक्तिशाली नहीं बन सकते, उनकी शक्तियों का दायरा सिमट कर रह जाता है। जिनमें मैंपन बहुत है वो भी शक्तिशाली नहीं बन सकते। परसमुरली में थी ये बात, कोई कहेंगे हमने इतनी सेवा की फिर भी हमारा पद छोटा सा, याद है अव्यक्त मुरली, क्योंकि निर्माण और निर्माण का बैलेंस नहीं रहा, मान के लिए सेवाएं की, सेवाओं से अभिमान आ गया, आनी चाहिए थी नम्रता, आ गई कटुता, अहंकार बढ़ गया, तो नंबर डाउन होता गया। हम सभी को ये ध्यान रखना है, हमारा जो ये रूहानी मार्ग है, स्पिरिचुअलिटी है, इसमें नम्रता, निरहंकारिता, ह्यूमिलिटी, यही हमारे मुख्य लक्षण होने चाहिए। अगर ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर भी किसी में अहंकार बढ़ जाए तो सच्चे शब्दों में तो वे ज्ञानी योगी हैं ही नहीं, वो सेवाधारी सर्विसेबल भी नहीं हैं। इसलिए हम अपना लक्ष्य बना लें, तभी हमारी सेवाएं बहुत सफल होंगी, बहुत सफल होंगी। जितनी नम्रता, जितनी निरहंकारिता, जितनी मृदुता, हमारी शक्तियां उतनी ही जमा होती जाएंगी और हम बहुत शक्तिशाली बनते जाएंगे। अनेक अव्यक्त मूल्यां संतुष्टता पर भी चली हैं। फरिश्ते संतुष्ट होंगे या इधर उधर देखेंगे, यहाँ से ये मिल जाए, यहाँ से ये विजन बनाओ फरिश्तों का, वो देखेंगे इधर उधर कि अभी कुछ मिला नहीं, रह गई कमी, ये और मिल जाए तो आनंद आ जाए, होगा ऐसा नहीं। संपूर्ण तृप्त आत्मा ये है फरिश्ते। पाते। तो हमें शक्तिशाली बनना है, बहुत संतुष्ट भी, निरंकारी भी, अब है संपूर्ण पवित्रता। फरिश्ते माना संपूर्ण पवित्र, क्योंकि उनका इस धरा पर आगमन, उनकी उपस्थिति इस संसार को पावन बनाने के लिए ही तो है। याद है पिछली बात, यहाँ हम चर्चा कर चुके हैं 8 घंटा योग मुरली थी ना, क्या करते हैं 8 घंटे के योगी, बोलो क्या होता है उनसे, भूल गए इतनी जल्दी। पवित्रता और शांति की किरणें फैलती हैं, वही बाबा के सबसे ज्यादा सहयोगी हैं, उनके द्वारा ही सेवा बहुत होती है। और जो योगी नहीं है वो सेवाओं के पीछे भागेंगे और योगियों के पीछे सेवा भागेगी। तो हम सभी अब संपूर्ण पवित्रता पर बहुत ध्यान दें, ये हमारा श्रृंगार है, इस पे खूब अच्छी चिंतन चर्चा होनी ही चाहिए, क्योंकि हम सबका सब्जेक्ट है संपूर्ण पवित्रता, जिसमें कोई गंदे स्वप्न भी नहीं, जिसमें व्यर्थ संकल्प भी नहीं, जिसमें देह का आकर्षण भी नहीं। बहुत सुंदर साकार मुरली की परिभाषा है, एक के सिवाय किसी की याद न रहे तब तुम्हें कहेंगे संपूर्ण पवित्र। और गुह्य महावाक्य है, बाप तुम्हारी समर्पणता तभी स्वीकार करता है जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो, साकार मुरली से है ये। संपूर्ण पवित्र बहुत सुंदर डेफिनेशन बाबा ने दी संपूर्ण पवित्रता की, अव्यक्त में है। संपूर्ण पवित्रता का अर्थ केवल व्यर्थ से मुक्त होना ही नहीं, बल्कि साधारण संकल्पों से भी ऊपर श्रेष्ठ स्वमान में स्थित आत्मा संपूर्ण पवित्र है। हम एक चीज बहुत अच्छी तरह जान लें, एक है पवित्र बनना, दूसरा है पवित्रता का बल जमा करना। किसी की पवित्रता केवल लाइट बनती है और किसी की पवित्रता माइट, बहुत बड़ा बल। धर्म के लिए ये सबसे बड़ी शक्ति है पवित्रता। मैं खोल कर ही जरा कह देता हूँ, जिन सेंटरों में पवित्रता बहुत ज्यादा है वहाँ सेवा भी बहुत ज्यादा है, वहाँ सेंटर निर्विघ्न है, और जहाँ थोड़ी सूक्ष्म भी है पवित्रता होगी विघ्न ही विघ्न रहेंगे। पवित्रता दूसरों के अभिमान को बढ़ाएगी, अननेसेसरीली बिना कारण के कोई ना कोई विघ्न डालने वाले बाबा के बच्चे निकल जाएंगे। आजकल विघ्न बाहर से नहीं आते, अपनों से आते हैं, और विघ्न डालने वाले बड़े खुश होते हैं, देखे आपने ऐसे लोग, बड़े खुश होते, हम भी कुछ हैं, दिखा दिया इस बहन जी को। ये सब बहुत बड़ा ज्ञान है। बहन जी को क्या दिखाएंगे, ऊपर वाला देख रहा है ना ये क्या कर रहे हैं, अब वो देख के क्या करेगा, फिर वो भी तो दिखाएगा कि अब देखो इसका फल क्या होता है। बाबा ने बोल दिया मुरली में, साकार में, नजदीक में ही, जो इस महान यज्ञ में विघ्न डालते हैं उनकी जब दुर्गति होगी तो सारा संसार उसे देखेगा। ये भी समय आ गया है, अब समीप आ रहा है। तो बहुत पवित्र, अब ये जबरदस्ती आएगी पवित्रता या कैसे कैसे आएगी, प्रेम से नहीं आएगी ये पवित्रता, आएगी योग बल से। योग बल से ही तो आत्मा में पवित्रता का बल आता है। अब एक व्यक्ति का आप उदाहरण लें, एक व्यक्ति बाबा का बच्चा बहुत अच्छा पवित्र है, उसने जीवन में किसी को हाथ भी नहीं लगाया, अपने मन को भी अच्छा रखा है, लेकिन वो योग नहीं करता, योग थोड़ा थोड़ा करता, वो किसी को कष्ट भी नहीं देता, वो स्वीट है, निर्मल है, बहुत अच्छी धारणाएं है ना, ऐसे बाबा कई बच्चे भोले बहुत अच्छे, ऐसे आत्माएं बहुत अच्छी हैं, तो उनकी पवित्रता का प्रकाश तो फैलेगा लेकिन उनकी पवित्रता यज्ञ के लिए बल नहीं रहेगी, धर्म के लिए बल नहीं बनेगी। क्लियर है ना? हम अपनी पवित्रता को शक्ति बना दें, न केवल हमारी शक्ति लेकिन इस महान यज्ञ के लिए शक्ति, धर्मों के लिए शक्ति। हम सभी पूर्वज हैं, हमारी पवित्रता का प्रवाह सारे संसार में फैलता है। एक माता है जो बहुत पवित्र है लेकिन बच्चों में मोह बहुत है, तो उसके पास भी पवित्रता के साथ बल नहीं रहेगा। उसकी पवित्रता है अच्छी, उसको व्यर्थ भी खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया लेकिन मोह रह गया। तो ये सूक्ष्मता हमें ध्यान में रखनी है, इसलिए आत्मिक दृष्टि को बढ़ाते चलें। एक प्रैक्टिस, अशरीरी होने की प्रैक्टिस को बढ़ाते चलें ताकि कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएं। कर्मेंद्रियों को शीतल ऐसे ही तो नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा बाबा के लिए एक बात और मुझे याद आ गई, ये भी मुरली से है, किसी ने कैच की हो, कि बाबा शिव बाबा बोल रहे थे, मैंने जैसे ही इनके तन में प्रवेश किया पहली बार तो इन्हें अपनी शक्तियां देकर इनकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया, क्योंकि रोज अब मुझे इनके तन में आना था। तो ब्रह्मा बाबा को बहुत सारी पवित्रता की शक्ति शिव बाबा ने प्रदान कर दी, क्योंकि उनके तन को यूज करना था। तो हमें अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि, बहुत अच्छा स्वमान, पांचों स्वरूपों का अभ्यास, पांचों स्वरूप ही पवित्र है ना, और योग, इन सब पर बहुत ध्यान देना चाहिए। पांचों स्वरूपों का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप भी बहुत पवित्र। याद दिला दूं आपको एक मुरली की जो पवित्रता पे चली है, पांचों स्वरूपों की प्योरिटी का वर्णन किया बाबा ने, तुम आत्माएं जब परम धाम में हो तो तुम्हारा प्रकाश अन्य आत्माओं के प्रकाश से बहुत ज्यादा है और तुम बाप के समीप हो। जो जितना पवित्र वो उतने ही बाबा के समीप है परम धाम में। देव स्वरूप तुम्हारा, बाबा ने कहा था, एक एक को अपने सामने लाओ, संपूर्ण पवित्र है, उनके दर्शन मात्र से ही भक्त पवित्र हो जाते हैं, सबके चित्त निर्मल हो जाते हैं। पूज्य स्वरूप इष्ट देव देवियां संपूर्ण पवित्र, ब्राह्मण पवित्र बन रहे हैं, फरिश्ता संपूर्ण पवित्र। तो अपने पांच स्वरूपों को जितना याद करेंगे, प्योरिटी की पावर, प्योरिटी की स्थिति बढ़ती ही जाएगी। और चले आगे फरिश्ता, जिसके मन में किसी के लिए भी घृणा भाव न हो। बहुत सुंदर महावाक्य थे परसों ही, जो अगेंस्ट को एडजस्ट करे, इंग्लिश के सब थे, अब पढ़ने वालों ने हिंदी बनाई थी या नहीं मुझे पता नहीं, यहाँ जो अगेंस्ट है, जो विरोधी है, संगठन में होते हैं ना, पांच का संगठन है, एक टेढ़ा चलने वाला है, हम सोचते हैं हमारे अगेंस्ट है ये व्यक्ति, उसको भी एडजस्ट करें, मिला दें। ये है निर्माण और निर्माण का बैलेंस। परसों की मुरली, संडे परसों ही था ना, परसों की मुरली में, तो कितनी गुह्यता बाबा हमें देता है, कितना ऊंचा उठाता है कि हमारी दृष्टि में कोई भी हमारा विरोधी न लगे। लगता तो है ना, भाई ये सहयोगी है, ये विरोधी है, ये हमें बहुत प्यार करता है, हम इसे बहुत प्यार करते हैं, ये थोड़ा टेढ़ा चलता है, बड़ा हमसे गड़बड़ करता है, तो हम भी उससे थोड़ा दूर रहते हैं, सबके साथ हो रहा है। लेकिन अगेंस्ट को एडजस्ट करना बड़ा भारी चैलेंज है। शत्रुओं को भी अपने पास रख लेना मुझे याद आ गई, उसमें दिखाया था चंद्रगुप्त के सीरियल में, जो उनको विजय यात्रा पर भेजना था चंद्रगुप्त को, तो साथी कौन ले जाए, तो चाणक्य ने कहा मित्रों को साथी नहीं बनाना है, जो तुम्हारे शत्रु हैं उन्हें ले जाओ। और चंद्रगुप्त परेशान, शत्रुओं को कहीं मुझे ही मरवा दें, उन्होंने कहा नहीं, इन शत्रुओं को तुम्हें मित्र बना लेना है। और जब उसने उन्हें मित्र बनाया तो वो उसके ऐसे मित्र बन गए जो राज दिलाने तक वो उसके साथ ही रहे। तो बाबा भी हमें ये कला सिखाते हैं। तो सबके लिए प्रेम, शुभ भावनाएं, चेक करेंगे सभी, अच्छी तरह चेक करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे मन में किसी के लिए भी नफरत न रहे, सब अच्छे लगे, सब धर्मों के लोग भी अच्छे लगे, आत्माएं, पड़ोसी भी अच्छे लगे। लगते हैं पड़ोसी अच्छे, या कूड़ा रोज हमारे घर में डालते हैं, बड़े खराब लोग हैं। भारत में ये बहुत काम करते हैं, विदेशों में तो नहीं कर सकते, यहाँ तो तंग करने के लिए अपना कूड़ा उनके वहां दीवार से फेंक दिया। लेकिन अगर हम शुभ भावनाएं रखते हैं तो ये सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। मैं माताओं को एक बात बहुत सिखाता हूँ, अगर किसी को यहाँ वो समस्या हो सीख लें। कल भी एक ग्रुप में दो माताएं बड़े अच्छे घर की, कहा हम बहुत बांधेली हैं, कितने समय से, 5 साल से ज्ञान में, बहुत बांधेली, बहुत बांधेली। मैंने उन्हें कहा ये गीत गाना बंद कर दो जरा, क्योंकि जो तुम बार बार सोचते हो उसका निर्माण होता है ना, मैं बंधन में हूँ, मैं बंधन में हूँ, तो बंधन कड़े होते जा रहे हैं। मैंने कहा सवेरे उठते ही 7 बार याद करना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बंधन मुक्त हूँ, अपने पति को आत्मा देखकर ये आत्मा मेरी पूर्ण सहयोगी है, गुड फ्रेंड है। बहुतों के अनुभव है, सब कुछ बदल गया, एक एक मास में सब कुछ बदल गया, 15-15 दिन में सब कुछ बदल गया। जो बंधन डालते थे, घर से बाहर नहीं निकलने देते थे सास ससुर, उन्होंने कहा चलो हम छोड़ के आते हैं, कार में बैठा के सेंटर छोड़ के आते हैं। ये भी बहुतों की कहानी बन गई है। हमारे संकल्प ही तो सब कुछ निर्माण कर रहे हैं ना। हम बार बार वही संकल्प, बाबा मैं तो आपकी बांधेली बच्ची हूँ, बाबा कहेगा तथास्तु, बांधेली रहो। अब अलग बाबा को ये सुनाने से क्या होगा कि बाबा हमें प्यार करे थोड़ा, लेकिन अकेला प्यार ही तो पर्याप्त नहीं है ना। प्यार बाबा कर भी ले, लेकिन हम बंधन में रह रहे, वो उठने भी न दें हमें, मुरली सुनने न जाने दें, तो बाबा के प्यार से तृप्त हो जाएगी आत्मा। प्यार एक चीज है जिसने हमें जगा दिया, लेकिन उसके आगे बहुत चीजें है ना। तो अपने संकल्पों को सभी चेक करें, रोज सवेरे संकल्प कर लिया करें, मेरे चित्त में संसार की हर आत्मा के लिए बहुत स्नेह है, संसार के सभी लोग मेरे गुड फ्रेंड हैं, मैं पूर्वज सभी के लिए मेरे मन में सद्भावनाएं भरी हैं। रोज अपने को ये संकल्प देने से जो निगेटिविटी है, ऐसी वैसी बातें मन में भरी हैं, वो समाप्त हो जाएंगी। पसंद है ये बात, ये हम सबको करते रहना है। फरिश्ते की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक अभ्यास रोज सबको करना है, अपने को भी देखना है उस स्वरूप में, दूसरों को भी उस स्वरूप में देखना है, क्योंकि जिस स्वरूप में हम दूसरों को देखते हैं उस स्वरूप हमारा भी निर्माण होने लगता है। हम देहभान से दूसरों को देख रहे हैं तो देहभान बढ़ रहा है, आत्मिक नजर से देख रहे हैं तो ऐसा दीदीपन होना सहज हो रहा है। दूसरों को फरिश्ता देखेंगे तो हम भी फरिश्ते सहज बनेंगे। एक चीज और इसके साथ, अब हम प्रैक्टिस पर आ रहे हैं, अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप का एक चित्र अपने सामने बना लिया करें, थोड़ी दूरी पर, कैसा है मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। आपके सामने कोई दीवार हो उस पे मन से चित्र अंकित कर दें, कैसा होगा? बिल्कुल ऐसा ही शरीर जैसा हमारा, लेकिन बहुत प्रकाश फैल रहा है उससे, और इतना प्रकाश फैलने लगा कि उस प्रकाश में जैसे वो शरीर भी दिख नहीं रहा है अब, लेकिन फैल रहा है प्रकाश और मस्तक में आत्मा चमक रही है। आत्मा को अलग चमकता देखें, गोल्डन कलर में देख लें, और शरीर से व्हाइट किरणें सफेद प्रकाश फैलता हुआ, ये है मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, बंधनों से मुक्त, धरती के आकर्षण से ऊपर अर्थात देवान से ऊपर, सबको संदेश देने वाला, संपूर्ण पवित्र लाइट, डबल लाइट, ये है मेरा स्वरूप। मन सकता है ना चित्र? फिर ये स्वरूप देखें धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा है और मुझ में समा जाता है। रोज एक बार तो कर ही लेना चाहिए, सवेरे शाम कभी भी दो बार करें और अच्छा, बिल्कुल इजी। ये साधनाएं हम सबको करनी है, इसलिए एकांत बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक होता है हमारे लिए। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो हमें इसके लिए करनी है, सूक्ष्म लोक में अपने को ले चलना है, फील करना है मैं ऊपर हूं। कैसे ले चलेंगे? सोचने की जरूरत नहीं कि फरिश्ता बने फिर ऊपर चलें, इसमें तो आप बन ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, अभी हम सब यहां बैठे हैं, चल के नीचे बाबा के रूम में बैठ जाओ एक सेकंड में, अभी बैठेंगे ना? तो जैसे ही हम अपने को बाबा के रूम में देखते हैं ना, तो हमारा फरिश्ता स्वरूप वहां निर्मित हो जाता है। ऐसे ही एक सेकंड में हम अपने को देखेंगे सूक्ष्म लोक में, आकाश के ऊपर, बस मैं वहां हूं, हो गया काम, इतना ही है। ज्यादा कुछ सोचना नहीं, फरिश्ते बनकर जाएं, ये सोचें वो सोचें, कुछ नहीं, मैं आकाश के ऊपर हूं, ये सूक्ष्म लोक है, फरिश्तों की दुनिया। फिर सामने देखें ब्रह्मा बाबा, उनके मस्तक में शिव बाबा, बिल्कुल डिवाइन एंजल, फरिश्ता, तेजस्वी, जितना अच्छा और तेजस्वी स्वरूप उनका देख सके वो देखें, देखने में बहुत आनंद आएगा। रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं बाबा से, बहुत तेजस्वी गोल्डन प्रकाश फैल रहा है, बहुत आकर्षक, मस्तक में महाज्योति है। बस यहां बाबा से अच्छे अनुभव करें, बाबा से रास भी कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, ये बहुत अच्छा अनुभव करें। बाबा दृष्टि दे रहे हैं, तिलक लगाकर वरदान दिया, एक बार कम से कम रोज, ये एक बार का अनुभव भी बहुत आनंद देने वाला हो जाएगा। ठीक है ना? इजी है? बिल्कुल इजी है। ये हमारी साधनाएं हैं जो योग के हिस्से हैं, जो हमारे पावरफुल योग को, बीज रूप योग को भी सरल बना देते हैं। अगर हम ये अभ्यास करते रहे तो बहुत इजी हो जाता है। अब नेक्स्ट बात, सारा दिन, कुछ दिन ये धुन लगा के देखें, कल लगा के देखें, आज अब से सोने तक और कल, कि मुझे 100 बार अभ्यास करना है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। इसको डिवाइड कर लें, इसको बांट लें कि अभी सोने तक 25 बार करेंगे, केवल रिपीट करेंगे, सवेरे उठते ही 25 बार कर लेंगे, जब तक योग में आके बैठे हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, बंधन मुक्त हूं, इस धरा से ऊपर हूं, लाइट का शरीर है। थोड़ा सा चिंतन आवश्यक होता है, भोजन खाते हुए 10 बार करेंगे, चाय दूध पीते 5-5 बार करेंगे, पानी जब भी पिएंगे 2-3 बार करेंगे, स्नान करते हुए 10 बार करेंगे, जो जो सेवाएं हैं उसमें जोड़ लो। तो एक सिंपल सी प्लानिंग कर ले, इतनी बार हम सारे दिन में ये अभ्यास करेंगे, 3 दिन करें, मैं तीन दिन इसलिए कहा कि बहुत दिन करने तक करने से कभी कभी मन उस चीज से ऊब जाता है, जरा वो चेंज चाहता है, चेंज कर लें फिर दो चार दिन के बाद शुरू करें। तो पुरुषार्थ की अपने पास कोई सुंदर प्लानिंग अवश्य होनी चाहिए, बिना प्लानिंग के ही चलते रहना इसे कहीं भी हम नहीं पहुंचते। प्लानिंग, आज हम ये अभ्यास करेंगे, बल्कि जो टीचर बहने मुरली सुनाए उनको मुरली से ही, मुरली में रोज कुछ ना कुछ अभ्यास की बातें आती हैं, और नहीं तो वरदान में स्लोगन में तो होती ही हैं। आज भी था ना, विघ्न विनाशक बनना है तो शक्ति संपन्न बनो, बहुत सुंदर चिंतन का विषय है। ऐसी कोई बात अपनी बुद्धि के लिए, मन के लिए, प्रैक्टिस के लिए रख लेनी चाहिए। उससे एक तो हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, दूसरा हमारा योग सहज होता जाएगा। जितनी प्रैक्टिस बढ़ेगी योग सरल हो जाएगा। जो लोग ये सोचते हैं हमारा योग नहीं लगता, क्या करें, बहुत आते हैं मेरे पास, क्या करें योग नहीं लगता, बहुतों के दो ही प्रश्न रहते हैं, उनमें माताएं ज्यादा हैं, योग नहीं लगता, व्यर्थ बहुत चलता है भाई जी, क्या करें व्यर्थ बहुत चलता है, विधि बताओ। मैंने कहा कि इंजेक्शन बना जाएगा जल्दी, सबको एक एक लगा दिया जाएगा, किसी को व्यर्थ नहीं चलेगा। भला व्यर्थ को कोई जबरदस्ती थोड़ा ही बांधा जा सकता है, ज्ञान के यूज के द्वारा अपने को व्यर्थ से बचाना है। चिंता होती है तो हम क्या सोचें जो चिंता ना हो, डर लगता है तो क्या सोचें जो डर न लगे, बोझ लगता है जिम्मेदारियों का तो क्या संकल्प करें जो हल्के रहें। तो बाबा ने संकल्प दिए है ना बहुत सुंदर, जो ज्ञान बाबा के बच्चों के पास है वो संसार के वेद के विद्वानों के पास, शंकराचार्यों के पास है ही नहीं। उन्हें चिंता होने लगे तो उन्हें ये पता नहीं कि चिंता बाबा कह रहा मुझे दे दो, तुम निश्चिंत हो जाओ, ये हमारे सामने है कि बाबा सामने बैठकर कह रहा है तुम चिंता क्यों करते, मैं हूं ना। उनके पास ये विचार नहीं है। तो सभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, और कल तो सामने बैठकर बाबा हमें देख रहे थे, रोज ऊपर से देखे फरिश्ते रूप में, अब इसी स्वरूप में बैठेंगे और सूक्ष्म लोक में। ओम शांति।